अध्याय 14 अब्सालोम को वापस बुलाने का उपाय। जब सरूया के पुत्र योआब ने देखा कि राजा का हृदय अब्सालोम के दर्शनों के लिए तरसता है, तो योआब ने तकवाह से एक बुद्धिमती महिला को बुलवाया और उससे कहा, विलाप करने का स्वांग भरो, शोक वस्त्र पहनकर और तेल आदि न लगाकर ऐसा शोक प्रदर्शित करो जैसे कोई महिला बहुत दिनों से किसी मृतक के लिए शोक मना रही हो। इसके बाद राजा के पास जाकर ये कहो। और योआब ने उसे सब बातें समझा दी। तकोआह की उस महिला ने राजा के पास जाकर भूमि तक माथा नवाकर प्रणाम किया और कहा, राजा मेरी सहायता कीजिए। जब राजा ने उससे पूछा क्या बात है, तब उसने उत्तर दिया, मैं एक विधवा हूं, मेरे पति मर गए हैं। आपकी इस दासी के दो पुत्र थे, वे दोनों आपस में खेत में लड़ने लगे और चूंकि उनको अलग करने वाला कोई नहीं था, इसलिए एक ने दूसरे को इस तरह मारा कि वो मर गया। और अब सभी कुटुंबी आपकी इस दासी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसने अपने भाई को मारा है उसे हमारे सुपुर्द करो, जिससे अपने भाई के प्राणों के प्रतिशोध में हम उसे मार डालें। इस प्रकार वे वारिस को भी मिटा देना चाहते हैं, वे मेरी एकमात्र जलती चिंगारी को भी बुझा देना चाहते हैं और पृथ्वी पर मेरे पति का न नाम रहने देना चाहते हैं न वंशज। तब राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम घर जाओ, मैं स्वयं तुम्हारा मामला निपटाऊंगा। तकोआह निवासिनी स्त्री ने राजा से कहा, श्रीमान राजा मेरे प्रभु, ये दोष तो मुझे ही लगेगा और मेरे पिता के घराने को भी, राजा और उनके राज सिंहासन का कोई दोष नहीं होगा। राजा ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कहे तो उसे मेरे पास ले आना, वो फिर तुमको तंग करने नहीं आएगा। वो बोली, राजा प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर मुझे आश्वासन दिलाएं कि रक्त प्रतिशोधी और रक्त न बहाएं, जिससे मेरा पुत्र पृथ्वी पर से नहीं मिटा दिया जाए। उसने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ, तुम्हारे पुत्र का बाल भी बांका नहीं होगा। उस स्त्री ने कहा, क्या आपकी दासी श्रीमान और राजा से एक और बात कह सकती है? उसने कहा, हां बोलो। तब उस स्त्री ने कहा, आप ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा निर्णय देने से राजा अपने ही को दोषी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि वो अपने निर्वासित पुत्र को वापस नहीं बुला रहे हैं। हम सबको मरना है, हम जमीन पर फेंक दिए गए पानी की तरह हैं जो फिर एकत्र नहीं किया जा सकता, किंतु ईश्वर में दुर्भाव नहीं होता, वो इसका ध्यान रखता है कि निर्वासित व्यक्ति उससे अलग नहीं रहे। मैं श्रीमान के सामने ये मामला रखने आई क्योंकि लोगों ने मुझे भयभीत किया है। आपकी इस दासी ने ये सोचा कि इस विषय में मैं राजा से बात करूंगी, हो सकता है कि राजा मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें और अपनी दासी को उन लोगों के हाथ से बचा लें जो मुझे और मेरे पुत्र को भी ईश्वर की दी हुई विरासत से वंचित करना चाहते हैं। आपकी ये दासी ये सोचती रही कि श्रीमान राजा की बात से मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि श्रीमान राजा स्वर्गदूत की तरह हैं जो भले बुरे का भेद जानता है। प्रभु आपका ईश्वर आपके साथ हो। इस पर राजा ने स्त्री से कहा, मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूं मुझसे तुम कुछ मत छिपाना। स्त्री ने कहा, श्रीमान राजा बोले। राजा ने पूछा, क्या इन सब बातों में योआब का भी हाथ है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, श्रीमान राजा मैं आपकी शपथ खाकर कहती हूं, श्रीमान राजा ने जो कुछ कहा है वो ठीक है। राजा जो कुछ कहते हैं उसे किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। आपके दास योआब ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है और आपकी दासी को ये सारी बातें समझाई हैं। आपके दास योआब ने ये इसलिए किया जिससे वर्तमान परिस्थिति बदल जाए, किंतु मेरे स्वामी तो स्वर्गदूत जैसे बुद्धिमान हैं, देश भर में जो हो रहा है वो सब जानते ही हैं। इस पर राजा ने योआब से कहा, मैं तुम्हारी मांग पूरी करने जा रहा हूं, जाओ और युवक अबसालोम को वापस ले आओ। योआब ने मुंह के बल गिरकर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपके दास को ये मालूम हुआ कि मैं अपने स्वामी और राजा का कृपा पात्र हूं, क्योंकि राजा ने अपने दास की बात मान ली है। इसके बाद योआब गशूर जाकर अबसालोम को यरूशलेम वापस ले आया। राजा ने आज्ञा दी, वो अपने घर जाए और मुझे अपना मुंह न दिखाए। इसलिए अबसालोम अपने घर रहा, परंतु वो राजा के सामने नहीं आया। अबसालोम का सौंदर्य और उसकी संतानी। इज़राइल भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अबसालोम की तरह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हो। एड़ी से चोटी तक अबसालोम में कोई दोष नहीं था। वो अपने बाल हर साल के अंत में कटवाया करता था, जब वे उसके सिर पर बोझ बन जाते थे। उनका वजन 200 राजकीय शेकेल हुआ करता था। अबसालोम के 3 पुत्र और तामार नामक पुत्री पैदा हुई। वो सुंदर थी। अबसालोम को क्षमा। राजा के सामने आए बिना अबसालोम पूरे 2 साल यरूशलेम में रहा। इसके बाद अबसालोम ने योआब को बुलवाया, जिससे वो उसे राजा के पास भेजे, लेकिन उसने उनके यहां आना स्वीकार नहीं किया। दूसरी बार बुलाने पर भी उसने आने से इनकार कर दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम जानते हो कि मेरे खेत के पास ही योआब का एक खेत है जिसमें उसने जौ बोया है, जाकर उसे जला दो। इस पर अबसालोम के नौकरों ने उसे जला डाला। तब योआब ने अबसालोम के घर जाकर उससे पूछा, तुम्हारे नौकरों ने मेरा खेत क्यों जलाया? अबसालोम योआब से कहने लगा, देखो, मैंने तुम्हें यहां बुलवाया था जिससे मैं तुम्हें भेजकर राजा से पूछवाऊं कि मैं गशूर के यहां क्यों लाया गया। यदि मैं अब भी वहां होता तो मेरे लिए अच्छा रहता। मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूं। यदि मेरा कोई अपराध हो तो वो मेरा वध करें। इस पर योआब ने राजा के पास जाकर वो सब बता दिया। तब उसने अबसालोम को बुलवाया। जब वो राजा के पास आया तो उसने राजा को साष्टांग प्रणाम किया और राजा ने अबसालोम को चुंबन दिया।